Just accept me as a completely surrendered soul. And let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way.
हे ब्राह्मण मुझे जो है एक समर्पित जीव के रूप में स्वीकार करिए और माता गंगा है वो भी मुझे इसी तरह से स्वीकार करें
For I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart.
मैंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर लिया है
Let the snake bird or whatever magical thing the Brahmin created bite me at once.
चाहे वो सांप हो या जो कोई भी चीज है वो अभी मुझे काट ले
I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu.
मेरा यही इच्छा है कि भगवान के बारे में गुण श्रवण करें.
This beautiful prayer is being offered to the great saints and sages who assembled on the banks of the Ganges. Is being offered by the great king of the world, Parikshit Maharaj.
ये जो प्रार्थना है ये परीक्षित महाराज जो है सब संतों और ऋषियों को बता रहे हैं जो कि गंगा जी के तट पर एकत्रित हैं
This is one of the most beautiful and important stories that has ever been told.
ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर कथा है
महाराज परीक्षित was the son of Abhimanyu and Subhadra. I'm sorry, Abhimanyu and Uttara. And he was the nephew of Arjuna, grandson. He was the grandson of Arjuna.
तो परीक्षित महाराज जो हैं, ये अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र हैं और अर्जुन के पौत्र हैं.
After the Pandavas left this world to surrender their entire lives in remembrance of Lord Sri Krishna, they left Maharaj Parikshit to be king.
जब पांडव चले गए धरती को छोड़कर तब उन्होंने परीक्षित महाराज को राजा बनवा दिया.
He was not only a king, but he was a great saint.
वो न केवल राजा थे बल्कि एक बड़े संत भी थे.
He ruled the entire kingdom strictly according to the guidance of pure-hearted and qualified Brahmins.
उन्होंने राज्य का जो है चालन ऐसे किया जैसे कि सच्चे ब्राह्मणों के निर्देश के अंदर.
And he was constantly immersed in singing the glories of Lord Sri Krishna.
और वो हमेशा भगवान के गुणगान करने में लगे रहते थे.
And he treated each and every one of his citizens. With the same care that he would treat his own child.
और अपने सब नागरिकों का वो ऐसा ख्याल रखते कि जैसे अपने बालक का ख्याल रखते हों.
He would travel throughout his kingdom just to see if anyone was in any anxiety.
वो पूरे राज्य में भ्रमण करते ये पता करने के लिए कि किसी को कोई चिंता तो नहीं है.
If anyone was suffering any kind of difficulty or was being mistreated.
अगर किसी को कोई मुश्किल तो नहीं है या किसी से कोई गलत व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है ये देखने के लिए.
And he would personally take care to protect even the most insignificant amongst his citizens.
अपने नागरिकों में से कोई तुच्छ सा भी प्राणी हो उसका भी ख्याल वो अपने हाथों करते थे.
One time while he was traveling, he found Kali personified.
एक बार जब वो भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने कलियुग को देखा मूर्तिमान स्वरूप में.
With a stick, he was beating an innocent cow.
और एक लकड़ी लेकर वो एक बेसहारा गाय को जो है मार रहे थे.
Maharaj Parikshit drew his sword and was about to kill.
महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल दी और वो मारने वाले थे.
Kali surrendered to him.
और काली ने उनको समर्पण कर दिया.
So Maharaj Parikshit spared his life.
इसलिए महाराज परीक्षित ने उसको छोड़ दिया.
Kali said, "I am also a citizen, and you have to provide some place where I can do my work."
तो कली ने कहा कि मैं भी आपका नागरिक हूँ, इसलिए मुझे भी कोई स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूँ.
Maharaj Parikshit said, wherever there is illicit sex, wherever there is the taking of intoxications, wherever there is the slaughter of animals or eating of their flesh, or wherever there is gambling, you can rule over that place where those activities are taking place.
So, Maharaj Parikshit ne kaha ki ye jo char sthan hain jahan par avaidh stree sang ho raha ho, jahan nashili cheez ho rahe ho, ya jahan maas bhakshan ho raha ho, ya jua khel raha ho, wahan par aap reh sakte hain.
But Kali, who is the personification of darkness, of quarrel, hypocrisy and irreligion, he pleaded with the king that as long as you are ruling this world, there is no chance that any of these four pillars of sinful activities could possibly take place.
Kali Yuga, wo Parikshit Maharaj se kehne laga ki jab tak aap rajya kar rahe hain, tab tak to ye char paap karma kabhi ho hi nahi sakte rajya mein.
As long as you are king, you are leading everyone to a pure life of God consciousness by your example.
Aur jab tak aap raja hain, tab tak aap apne udharan se jo hai ek bhagwat bhavana jo hai jeevan bita rahe hain.
Krishna says in Gita, yad yad acharati shrestas tad tad evetarojana sayat pramanam kurute lokastarano varatate, that what great men do, common men will follow in their footsteps.
कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं जो महापुरुष करते हैं साधारण पुरुष फिर उन्हीं का अनुसरण करते हैं.
This is a very important verse.
ये एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है.
Similarly, Vishabdev has said, "Pitasna sasyaj jananina satsyat," that anyone who is in a leadership position, anyone who has dependents under them, they are responsible as their first and foremost duty in life, by their example and by their words, to guide their dependents toward the perfection of self-realization.
उसी तरह से यहाँ ऋषभदेव बताते हैं कि जो व्यक्ति जो है माता पिता हैं, उनका ये कर्तव्य है कि जो उन पर निर्भरित लोग हैं, उनको मार्गदर्शित करें अपने आचरण से और अपने वचनों से भगवत तत्व की ओर.
Therefore, the Bhagavad says, you have no right to take the position of a king or a leader, nor do you have the right to take position of a parent, a mother or a father, unless by your words and your example you can guide your child on the path by which they never have to take birth and suffer again.
इसलिए भागवतम कहती है कि आपको पिता बनने का, माता बनने का, नेता बनने का या राजा बनने का अधिकार नहीं है जब तक कि आप पर जो निर्भरित लोग हैं उनको आप जो है भगवान के धाम की ओर मार्गदर्शित नहीं कर सकते.
To provide your family or your dependents with food and clothing and a place to sleep and an education is qualitatively no better than what the animals are doing.
अगर अपने बच्चों को जो है खाना भोजन वगैरह देना, रहने का स्थान देना, ये तो ऐसी चीज है कि जो पशु भी करते हैं.
Every parent in the animal, bird and insect and lizard species, they are providing their children with food. They are providing their children with a place to stay. And they are also teaching their children, educating them how they could survive and make it successfully in this world.
तो ये तो हम देखते हैं हर पशु में या पक्षी में या कीड़े में भी जो माँ बाप है सिखाते हैं कि किस तरह से भोजन करना है, किस तरह से रक्षा करनी है, किस तरह से सोना है, ये तो हर योनि में चलता है.
Perhaps not in such a sophisticated way, but the principle is the same.
चाहे उसका ढंग अलग हो सकता है लेकिन सिद्धांत तो वही है.
अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, the purpose of this human form of life is to realize the spiritual existence within us, which is beyond the sufferings of birth and death.
मानव जीवन का उद्देश्य यह है कि अपने आध्यात्मिक अस्तित्व को पहचानना जो कि जन्म और मृत्यु से परे है.
To be liberated once and for all from pain and suffering.
हमेशा के लिए जो है ये दुख और दर्द से मुक्त हो जाना.
And to reestablish our eternal, natural love of God.
और हमारा स्वाभाविक भगवत प्रेम को पुनर्जागृत करना.
The soul is Sachit Ananda.
ये आत्मा जो है वो सच्चिदानंद है.
It is eternal, full of knowledge and full of bliss.
वो नित्य है, ज्ञान से पूर्ण है और आनंद से पूर्ण है.
But the temporary body that is covering the soul is asat. It is temporary. It is achit. It is full of ignorance and it is nirananda. It's full of suffering.
लेकिन ये जो शरीर है जो कि आत्मा को ढकता है वो असत यानी कि कुछ समय के लिए है, वो अचित है, उसमें ज्ञान नहीं है और निरानंद दुखों से पूर्ण है.
Real love is to give a person the inspiration and the education by which they could transcend these sufferings forever.
सच्चा प्रेम ये है कि व्यक्ति को ये ज्ञान देना जिससे के द्वारा वो हमेशा हमेशा के लिए दुख से मुक्त हो जाए.
And that is the first and foremost responsibility of anyone who has a leadership position in this world, whether they be a teacher or a mother or a father or a king.
तो समाज में जो भी कोई माता पिता या राजा हो उसका पहला कर्तव्य यह है कि अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा प्रदान करना.
So Maharaj Parikshit was told by Kali, because you are such a king that all your dependents are God conscious.
तो कली जो है महाराज परीक्षित से कह रहे हैं कि आप ऐसे अच्छे राजा हैं तो आपके सब जो निर्धारित हैं वो इससे मुक्त हैं.
If I search through every part of this world, I will not see illicit sex, intoxication, gambling, or cruelty to animals.
अगर मैं पूरे राज्य को भी खोज लूं तो ये जो चार चीजें हैं जो पाप के वो मुझे नहीं दिखाई पड़ेंगे.
So you must kindly give me some place to have my service.
लेकिन मुझे भी कोई स्थान दीजिए मेरी अपनी सेवा के लिए.
My service is to create quarrel amongst different segments of society, quarrel between castes, quarrel between nations, quarrel between religions, quarrel between friends, quarrel between family members, quarrel between lovers, create a atmosphere of hypocrisy, irreligion, and sinful activities.
तो वो बताने लगा कि मेरा यही कार्य है कि आपस में लोगों में, समाज के अलग अलग अंगों में, अलग अलग देशों में, परिवार में और मित्रों में जो है आपस में झगड़ा और कलह पैदा करना.
So give me some place I could do my seva.
इसलिए मुझे कुछ तो स्थान दीजिए जहां पर मैं अपनी सेवा को कर सकूं.
He said, all right. Wherever people are hoarding too much wealth for their own personal sense gratification, you can rule over those people's lives.
तो राजा परीक्षित बोले ठीक है, जहां पर लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज्यादा धन एकत्र करके रखे हैं वहां पर आप रह सकते हैं.
This was the type of king Maharaj Parikshit was.
इस प्रकार के राजा थे महाराज परीक्षित.
Everyone loved him like father.
सब उसको पिता के समान प्रेम करते थे.
One time he was on an excursion in the forest.
एक बार की बात है वो जंगल में भ्रमण कर रहे थे.
And suddenly he was stricken with terrible thirst.
अचानक उनको बहुत ही ज्यादा जो है प्यास लग उठी.
His mouth became very dry.
उनका मुंह बिल्कुल सूख गया.
It was intolerable.
वो सहन नहीं कर पाए.
So he saw the hermitage of a great sage of the name Samik Rishi.
उन्होंने शमिक ऋषि नामक संत की कुटिया को देखा.
So he went into that hermitage for the purpose of asking for a little water.
तो वो कुटिया में गए थोड़ा सा पानी मांगने के लिए.
But Samik Rishi was sitting engrossed in deep meditation.
लेकिन शमिक ऋषि जो है बिल्कुल पूरे ध्यान में मग्न थे.
He was in such a state of samadhi that he was no longer conscious of the external world through his senses.
वो उस स्थिति में थे समाधि के कि उनको बाहर की स्थिति का और इंद्रियों का बिल्कुल ज्ञान नहीं था.
So Parikshit Maharaj, he came into the house. He was thinking, what type of reception is this? Even if an enemy comes to your home, it is proper to give them at least a sitting place and some water.
तो परीक्षित महाराज सोचने लगे कि ये कैसा स्वागत है, अगर घर में शत्रु भी आ जाए तो उसे बैठने के लिए स्थान और पानी तो देना ही चाहिए.
I am the king of this entire empire, but this Brahmin, he is so proud that he is of such a high caste that he is not even showing me the slightest courtesy.
मैं ये पूरे राज्य का राजा हूँ और ये ब्राह्मण जो है अपने आप को ऊंची जाति का मानता है, इसीलिए उसने मेरे को कभी अतिथि का सत्कार भी नहीं किया.
And because his thirst was so great, what he did is he considered that this Brahmin was offensive.
क्योंकि उनको इतनी ज्यादा प्यास लगी थी, उनको लगा कि ये ब्राह्मण ने अपराध किया है.
As he was leaving, he saw a dead serpent laying on the ground.
वो वहां से जा रहे थे तब उन्होंने रास्ते में जो है एक मृत सर्प देखा.
And with his bow, he put the snake on the shoulder of the Brahmin like a garland.
फिर उन्होंने अपने धनुष से जो है वो सर्प उठाकर उसके गले में एक हार के रूप में डाल दिया.
And then he left.
और फिर वो वहां से चले गए.
But as he was leaving, he began to reflect, "What I have done, I have committed an offense to a great soul."
फिर वो जाते समय रास्ते में सोचने लगे कि मैंने क्या कर दिया? मैंने एक महापुरुष के प्रति अपराध कर दिया है.
Perhaps it was not out of pride. Perhaps he was actually in samadhi and he never recognized that I was there.
शायद वो समाधि में थे, इसलिए उनको पता ही नहीं होगा कि मैं वहां पर था.
At that time, his son, the Brahmin's son, who was just a young, inexperienced boy, was playing with his friends, and he received the news that Maharaj Parikshit had put the serpent on his father's shoulder.
उस समय उस ब्राह्मण के पुत्र को यह समाचार मिला कि राजा परीक्षित ने उसके उसके पिता के गले में यह सर्प डाला है.
And he became very angry.
और वो अत्यंत क्रोधित हो उठे.
His eyes became red like red coals.
उसकी आंखें जो हैं लाल लाल कोयले की तरह हो गई.
He began to speak that these chatriyas, these kings, they are lower than us Brahmins, like a crow or like a dog. What right does he have to come into the home of the master and eat off the same plate?
वो इस तरह से कहने लगे कि ये क्षत्रिय हैं, ये तो कौवे के समान, कुत्ते के समान है, इनको क्या अधिकार है कि हमारे घर में आना और हमारे साथ लेने का.
These kings, they are simply meant to be the watchdogs and the servants of the Brahmins. What right does he have to come and expect anything from us?
ये राजा जो हैं, वो तो हमारे जो है सेवक के समान हैं, उनको क्या अधिकार है कि हमारे से कुछ आशा करने का.
Now that our Lord, the Supreme Lord Sri Krishna, has recently left this world, now we see that even the great kings are becoming irreligious and offensive.
अभी हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं, इसलिए हम देखते हैं कि जो राजा हैं वो भी अपराधी हो गए हैं.
Therefore, I must take action in my own hands to bring justice.
इसलिए न्याय करने के लिए मुझे जरूर अपने हाथों कुछ करना ही होगा.
In the presence of all his little friends, he touched the water from the Kaushiki River and he pronounced a curse.
और अपने सब मित्रों के सामने जो है उन्होंने पानी लेकर जो है शाप दिया.
I curse that 7 days from today this King Parikshit will be bitten by a snake bird and die.
मैं ये शाप देता हूँ कि आज से 7वें दिन जो है एक सांप आएगा और परीक्षित महाराज को काट देगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी.
Meanwhile, Maharaj Parikshit was returning to his palace, feeling very bad that I have committed an offense to a Brahmin, and he began to pray, "Whatever reaction may be for this offense, let it come upon me now to suffer."
और उस समय जो है परीक्षित महाराज वापस लौटते समय सोच रहे थे, मैंने अपराध किया है और इसका जो भी फल होगा वो अभी आ जाए तो अच्छा है.
You see, when one commits a sinful activity, not only does he have to suffer, but his whole family has to share the sinful reaction.
क्योंकि जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो न केवल उसको भोगना पड़ता है बल्कि उसके पूरे परिवार को पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है.
But similarly, if we perform pious activities, our whole family and loved ones all share those reactions.
उसी तरह से जब कोई हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वो भी उसका फल जो है सारे परिवार को मिलता है.
But the greatest service, if we engage in loving service of the Lord, the benefits are not only upon us, but even our loved ones.
अगर हम भगवान की प्रेमय सेवा में लगते हैं तो न केवल हमें इसका लाभ मिलता है बल्कि सभी को उसका मिलता है.
The evidence of this was Prahlad Maharaj.
इसका सबूत है प्रहलाद महाराज.
By the strength of his devotion to Lord Krishna, even his demoniac father Hiranyakashipu was liberated.
क्योंकि उसकी भक्ति का प्रभाव ये था कि उसके राक्षसी पिता हिरण्यकश्यपु भी मुक्त हो गए.
So Maharaj Parikshit was thinking that I have committed an offense to a great Brahman. Therefore, before any reactions come upon my family members or anyone else, let it all come upon me now.
वो महाराज परीक्षित सोच रहे थे कि मैंने इतना बड़ा अपराध किया ब्राह्मण के प्रति, इससे पहले कि मेरे परिवार वाले को कुछ फल मिले उसे मुझे ही सारा पाप फल मिल जाए.
Such a pious soul, this is how he was praying to God.
वो ऐसे महात्मा पुरुष थे कि वो ऐसे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे.
Meanwhile, Samik Rishi returned, Sringi, after cursing Parikshit, he ran to his father to see how he was.
और उसके बाद श्रृंगी ऋषि श्राप देने के बाद अपने पिता के पास वापस कुटिया में लौट गए.
And his father, Samik Rishi, was still sitting in samadhi.
और उसके पिता शमिक ऋषि अभी भी समाधिस्थ थे.
And seeing the serpent on his father's shoulder, Sringi began to cry.
और उसके गले में सर्प देखकर श्रृंगी जो है रोने लगे.
Sringi also realized that he had committed a great mistake.
वो भी समझ गए कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है.
And he did not have the power to retract it.
और उसके पास कोई शक्ति नहीं थी कि उसको वापस ले लें.
So he began to cry very loudly.
वो बड़े जोर जोर से रुदन करने लगे.
So loudly that it disturbed his father and brought him back to external consciousness.
इतनी जोर से रोने लगे कि उसके पिताजी की जो समाधि भंग हो गई.
His father saw the snake and just without any concern threw it upon the ground.
उसके पिता ने सांप देखा और बिना कुछ ज्यादा फील किए हुए उन्होंने निकाल के रख दिया.
When Maharaj or when Sringi explained to his father what had happened, his heart was broken in a feeling of distress.
लेकिन जब उन्होंने अपने पिता को समझाया कि क्या हुआ है, उसके पिता का हृदय जब फट गया और वो दुखी होने लगे.
He said to his son that due to your inexperience and your immature mind, you have committed the greatest offense.
उन्होंने अपने लड़के से बताया क्योंकि तुम ज्यादा जो है तुम्हारे अंदर ज्यादा अभ्यास नहीं है, इसीलिए तुमने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है.
The king was very thirsty, and so he put a little snake on me. That is not a very important thing at all. How did it hurt me? What did it do? Besides that, I didn't welcome him. What was wrong with him doing this? But for such a small thing, you have cursed him to die? And he is the king, he is the representative of God, he is a pure devotee of the Lord, he is protecting the Dharma and religion throughout the world.
तो वो राजा बताने लगे, वो शमिक ऋषि उनको बताने लगे अपने पुत्र को कि ये तुमने अच्छा नहीं किया. ये तो वे राजा थे जो कि भगवान के प्रतिनिधि थे, और वैसे भी उन्होंने अपराध तो कोई बड़ा नहीं किया था, सिर्फ एक सांप ही डाला था. गलती मेरी थी, मैंने अतिथि का अच्छी तरह से यह सत्कार नहीं किया था.
And Samik Rishi began to pray to Lord Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Please forgive this immature and inexperienced child of mine from the terrible, terrible sin that he has committed.
और शमिक ऋषि भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगे कि ये जो मेरा छोटा बालक है, जो अनुभवहीन है, उसको कृपया क्षमा कर दीजिए.
And then Samik Rishi, he was so ashamed of what he had done, of what his son had done. He could not even face Maharaj Parikshit himself, but he sent a message to him about his curse that he would die in 7 days.
Samik Rishi को इतना बुरा लग रहा था कि वो स्वयं भी नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने एक संदेश वाहक को राजा परीक्षित के पास भेजा कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी.
And when Maharaj Parikshit received this message, he accepted it as very good news.
जब महाराज परीक्षित को समाचार मिला तो उसने उसको अच्छा समाचार मानकर स्वागत किया.
He rejoiced.
वो बहुत प्रसन्न हुए.
He accepted it as the mercy of Sri Krishna.
उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की कृपा रूप में इसको स्वीकार किया.
He was thinking that I am so attached to my family, and I'm so attached to my wealth, and I'm so attached to being king, that unless Krishna gave me such special kindness as this, how would I ever detach myself from all these things and surrender to him, which is the goal of life?
वो सोच रहे थे कि मैं अपने परिवार के प्रति, अपने धन के प्रति, राज्य के प्रति इतना आसक्त हूँ कि जब तक अगर भगवान श्री कृष्ण मुझे अवसर नहीं देते तो मैं कैसे उनको समर्पण करता जो कि जीवन का ध्येय है.
And he made a vow that I will give up all worldly activities, I will give up all material attachments, I will give up all other processes of religion, all other techniques of yoga, and I will simply go to the banks of the Ganges to hear and chant the glories of Sri Krishna.
और उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने सब राज्य के कार्य सब कुछ छोड़कर, सब योग सब धर्म को त्याग करके अब गंगा जी के तट पर जाकर भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करूंगा.
Because to hear and chant the glories of Sri Krishna in the association of devotees, of sadhus, is the supreme perfection of life.
क्योंकि साधुओं के संग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण और कीर्तन करना यही जीवन की सिद्धि है.
Maharaj Parikshit left everything behind and he went to the bank of the Ganges and he put a mat made of kusha grass with the facing the east, and then he sat facing the north and made his vow to fast till death and immerse his consciousness in hearing and chanting the glories of the Lord.
और वो गंगा जी के तट पर चले गए. एक जो है कुश का आसन उन्होंने पूर्व की ओर रखा और अपने खुद को उत्तर की दिशा के मन लगा कर उन्होंने निश्चय किया कि बस मैं भगवान के बारे में श्रवण और कीर्तन करूंगा.
अपॉन हियरिंग ऑफ दिस मोस्ट वर्चुअस एंड प्योरली स्पिरिचुअल एक्शन ऑफ द किंग, ऑल द ग्रेट आचार्यस, ऋषिस एंड सेजेस, दे ऑल केम टू असेंबल एट दैट होली प्लेस on Ganges bank.
तो ये जब इतना शुद्ध विचार सुनकर सारे संत, ऋषि और आचार्य जो हैं वहाँ पर गंगा जी के तट पर एकत्र हो गए.
अंगिर मुनि, नारद मुनि, अगस्त्य मुनि, इंद्र प्रमाद मुनि, भारद्वाज मुनि, विश्वमित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि, वेदव्यास, and thousands of others, they all came to be present during the last days of the life of Maharaj Parikshit.
तो ये सब जो संतों के नाम बताए, और भी कई हजारों संत जो हैं महाराज परीक्षित के आखिरी दिनों में रहने के लिए वहाँ पर उनके पास आए.
And when each and every one of them arrived, Maharaj Parikshit personally, with great attention and love, greeted them with folded palms and took the dust from their lotus feet.
और जब हरेक के जो आने पर उन्होंने उनको हाथ जोड़कर स्वागत किया और उनके चरण कमल की धूल जो है वो सर पर ग्रहण की.
एंड देन ही एक्सप्लेन्ड टू देम व्हाट वाज हिज वाउ.
और फिर सबको उन्होंने समझाया कि मेरी क्या प्रतिज्ञा की है.
दैट इन द कंपनी ऑफ ऑल ऑफ यू आई एम सिंपली डिजायरिंग टू हियर द मैसेज ऑफ कृष्ण.
मैं यही चाहता हूँ कि आप सबके संग में भगवान श्री कृष्ण के संदेश का श्रवण करूं.
ही वाज एक्सप्लेनिंग how fortunate he was that in this curse to die he is now in the assembly of so many great devotees of the Lord.
वो ऐसे कह रहे थे कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि शाप के कारण जो है अब इतने बड़े संतों के समागम में पहुंचा हूँ.
At that time the greatest of all this the rishis appeared.
और समय सब ऋषियों में सबसे महान वहाँ पर प्रकट हुए.
He was the divine son of Srila Vyasadeva.
वो व्यासदेव जी के दिव्य पुत्र थे.
Srila Shukadev Goswami.
का नाम Shukadev Goswami.
He was only 16 years old.
वो सिर्फ 16 वर्ष के थे.
He was so pure. He was so detached from this world.
वो इतने शुद्ध थे और दुनिया से अनासक्त थे.
He came without even any clothing.
वो निर्वस्त्र वहाँ आए.
He had beautiful lotus eyes, long curling black hair, and his complexion was shama, the same identical complexion as Krishna himself.
ये कमल नयन थे, सुंदर घुंघराले बाल थे और भगवान श्री कृष्ण के समान उनका श्याम वर्ण था.
And when he appeared, all the great saints and sages, they stood up to receive him.
और जब वो वहां पर प्रकट हुए तो सारे महान संत और ऋषि उनको खड़े उनको स्वागत करने के लिए
एंड दे ऑफर्ड हिम द एलिवेटेड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेबल सीट ऑफ ऑनर
और उन्होंने उनको सबसे बड़ी जो आदर की गद्दी प्रदान की
एंड महाराज परीक्षित बाउड एट हिज फीट
और महाराज परीक्षित उनके चरण कमलों में गिरे
ही सरेंडर्ड हिज लाइफ
उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया
एंड ही बिगन टू इंक्वायर फ्रॉम हिम
और उनसे जिज्ञासा करने लगे
शुकदेव गोस्वामी जी बाय योर काइंड मर्सी हूएवर सीज यू हूएवर हियर्स यू दैट पर्सन बिकम्स अ होली प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज
गोस्वामी से कहने लगे कि आपको जो देखता है आपके बारे में जो श्रवण करता है वो व्यक्ति भी तीर्थ स्थान बन जाता है
बिकॉज यू आर ऑलवेज इमर्स्ड इन द लविंग थॉट्स ऑफ श्री कृष्ण एंड यू आर ऑलवेज चैंटिंग हिज ग्लोरीज It is my supreme fortune in life that you have so mercifully come.
क्योंकि आप हमेशा कृष्ण के विचारों में मग्न रहते हैं और हमेशा कृष्ण के गुणगान करते रहते हैं ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आप यहाँ पर प्रकट हुए हैं
I am in the royal order. I am degraded. I am attached to all kinds of material sense gratification. But by your infinite kindness, you have come even to such a lowly being to show me mercy. In the last days of my life.
मैं एक राजा हूँ मैं पतित हूँ और मैं इंद्रियों के प्रति आसक्त हूँ लेकिन फिर भी आप इतने दयालु हैं कि मेरे ऊपर आखिरी दिनों में कृपा करने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए हैं
And then he asked Shukadev Goswami three questions.
और उन्होंने सुखदेव महाराज से दो प्रश्न पूछे
These three questions are the most important questions in all of creation.
ये जो प्रश्न है ये पूरे सृष्टि के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है
And one who asks these questions with a sincere heart to a proper representative of God is guaranteed the supreme perfection of life
aur jo ye prashn ek sachche bhagwan ke pratinidhi se puchta hai usko nischit hai ki usko jeevan ki siddhi prapt hogi
the first question is what is the most important duty In the performance of our occupation.
पहला प्रश्न ये था कि अपने कर्तव्य करते हुए उसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है
What is the highest occupation in all humanity?
सारी मानवता में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है
The second is what is the essence of all religions?
दूसरा ये कि सब धर्मों का सार क्या है
And the third is the most important of all the questions. Because it pertains to each and every one of us. At all times.
और तीसरा है ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब के लिए है सब समय के लिए है
What is the duty of a man about to die?
जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली हो उसका क्या कर्तव्य है
And in answer to these three questions, Shukadev Goswami spoke the Srimad Bhagavatam.
और इन प्रश्नों के जवाब स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद भागवत बतलाई
The 18,000 slokas of the Srimad Bhagavatam are the answers to these three questions by Maharaj Parikshit.
ये जो 18,000 श्लोक हैं श्रीमद् भागवत के वो महाराज परीक्षित के इन प्रश्नों के उत्तर हैं
मुनया सरुपृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृपा कृष्ण सम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति That these questions are most glorious because the answers to these questions are meant for the ultimate welfare of all humanity because the subject is krishna
ye prashn jo hai bahut yashasvi hai kyunki in prashno ka jo uttar hai sab manavta ke liye acha hai kyunki iska vishay jo hai shri krishna hai
although shukadev goswami gave so many beautiful stories Prahlad Maharaj, Dhruva Maharaj, Ambarish Maharaj, Gajendra. He told the whole beautiful story of Lord Shri Krishna. The most famous, instructive, and illuminating stories ever told to answer these questions. He summarized everything in one verse.
हालांकि उन्होंने कई कथाएं बताई जैसे कि ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराज और गजेंद्र के बारे में और श्री कृष्ण के चरित्र लेकिन इन सब का जो है एक श्लोक में इसका सार दिया गया है
एंड व्हाट इज दैट वर्स दैट द सुप्रीम परफेक्शन ऑफ लाइफ the ultimate duty of every human being is to always hear about, chant about, and remember the Supreme Lord Shri Krishna.
और वो यह है कि सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में श्रवण करना, कीर्तन करना और स्मरण करना.
In fact, Lord Kapila Dev, he said that of all the injunctions and all the instructions in all the scriptures in all the world, there are two instructions that is the ultimate conclusion and contain all others.
और ऐसा बताया जाता है कि जो सारे जो शास्त्र में जब चीजें बताई गई हैं, उनमें सबसे दो महत्वपूर्ण आज्ञाएं हैं जिनके अंदर सारे वचनों का सार दिया गया है.
And that is the first, to always remember Krishna.
पहला ये है कि हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करें.
The second, to never forget Krishna.
और दूसरा यह है कि कभी कृष्ण को भूले नहीं.
Let us analyze this beautiful story.
अब इस सुंदर कथा का हम व्याख्यान करेंगे.
Maharaj Parikshit was a self-realized soul. Why is it that he became so overcome by thirst that he was disrespectful to a Brahman?
अब हम देखेंगे कि राजा परीक्षित तो आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुए व्यक्ति थे, ऐसा क्यों है कि वो इतने प्यासे हो गए कि उन्होंने अनादर किया एक ब्राह्मण का.
He was beyond the modes of material nature. He was transcendental to hunger and thirst.
वो प्रकृति के नियमों के परे थे और भूख और प्यास से भी परे थे.
But Krishna, who is the Lord within everyone's heart, induced him to suffer this thirst.
कृष्ण भगवान जो सबके हृदय में है, उन्होंने जानबूझकर उनके हृदय में ऐसी बहुत प्यास पैदा की.
Maharaj Parikshit was such a humble, loving servant, not only to all living beings, but especially to the great sages and the Brahmins. How is it that he became angry with a Brahman?
महाराज परीक्षित सब सबके सबके सेवक थे, विशेष करके ब्राह्मणों के और संतों के, तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि वो ब्राह्मण के प्रति क्रोधित हो उठे?
The answer is, it wasn't him. It was the arrangement of Krishna.
इसका उत्तर यह है कि उनके कारण नहीं था, बल्कि भगवान श्री कृष्ण का इंतजाम था.
Krishna, from within his heart, induced him to do that.
कृष्ण ने उनके हृदय से ऐसा करने के लिए उन्हें प्रेरित किया.
And even though it was a very minor offense, Maharaj Parikshit still, after he did it, after Krishna removed the covering of illusion to do that, he felt so sorry and so repentant that he had done it.
हालांकि ये छोटा सा अपराध था, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने माया का पर्दा हटा दिया, तब राजा परीक्षित को बड़ा पश्चाताप होने लगा.
You see, before great enlightenment, illumination, or anything auspicious spiritual comes into our life, first we must undergo tribulation.
हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, इससे पहले कि कुछ ज्ञान आए और अच्छी मंगलकारी चीजें आए, पहले हमें दुख सहन करना पड़ता है.
Krishna put Maharaj Parikshit in an embarrassing and suffering condition.
कृष्ण भगवान ने जो है परीक्षित महाराज को ऐसी जो स्थिति में डाला जिससे उनको पश्चाताप लग रहा था.
Because if he did not, the Srimad Bhagavatam would have never been spoken.
क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद श्रीमद् भागवतम कभी बोला ही नहीं जाता.
And if the Srimad Bhagavatam had never been spoken, all humanity would have been deprived of the highest knowledge of Krishna.
और अगर भागवत नहीं बोली जाती तो पूरी मानवता को सबसे श्रेष्ठ कृष्ण का ज्ञान नहीं प्राप्त होता.
Just like Maharaj Parikshit's grandfather, he was also, although a purely realized soul, by the arrangement of Krishna, he was also put into a state of complete bewilderment, suffering and distress.
और जैसे कि परीक्षित के दादा थे, वो भी वास्तव में आत्म साक्षात्कार के व्यक्ति थे, लेकिन उनको जो है ऐसे मोह में डाला गया था.
You know the story of the Bhagavad Gita.
आप भगवत गीता की कथा जानते ही होंगे.
In the first chapter, Arjuna, he was about to fight this war, and then his mind became completely bewildered.
अर्जुन जो है लड़ाई करने वाले थे, लेकिन बाद में जो उनका मन बिल्कुल मोहित हो गया.
He did not know, should I fight or should I not fight?
उनको ये पता नहीं चला कि मैं लडूं कि नहीं लडूं.
He became filled with attachments.
वो आसक्तियों से भर उठे.
And he was suffering so bad.
वो इतना दुख भोग रहे थे.
That he became pale white.
उनका शरीर जो है सफेद हो गया.
Tears were flowing from his eyes.
उनके आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे.
His hairs were standing on end.
उसके रोम खड़े हो रहे थे.
His entire body was trembling.
शरीर कंपन हो रहा था.
He could not even hold his Gandiva bow. It fell to the ground.
यहां तक कि अपना गांडी धनुष भी नहीं उठा पाए. वो जमीन पर गिर पड़ा.
Now let me ask you all, have any of you ever been in that severe a state of anxiety?
मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आप में से कोई भी जो है ऐसी स्थिति की चिंता की स्थिति में रहा है?
Have you ever been in such distress and frustration mentally that your hairs were standing, your whole body turned white, your mouth became dry, and you were trembling so much you could not even hold?
क्या आपको ऐसे कभी हुआ है कि आपके जो हाथ से भी कुछ पकड़ भी नहीं पाए और आपका शरीर कांपने लग जाए और शरीर सफेद हो जाए?
That was the terrible, distressful condition Arjuna was in.
ये एक भयंकर दुख था जो इसमें के अर्जुन थे उस समय.
And in that condition, with folded palms, he asked Krishna, "What is my duty?"
और इस स्थिति में हाथ जोड़कर उन्होंने कृष्ण से पूछा कि मेरा क्या कर्तव्य है?
What is the goal of my life?
जीवन के ध्येय क्या है?
If Arjuna did not suffer like that, the Bhagavad Gita would have never been spoken.
अगर अर्जुन इस तरह से दुख में नहीं जाते तो भगवद गीता कभी बोली नहीं जाती.
If Parikshit was not cursed to die, the Srimad Bhagavatam would never have been spoken.
अगर परीक्षित महाराज को मृत्यु का शाप नहीं दिया जाता तो भागवत कभी नहीं बोली जाती.
When Krishna puts his devotee in a condition of distress, we should know it is always for the ultimate welfare of that devotee.
अगर कृष्ण किसी भक्त को दुख भेजते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो उस भक्त के अच्छे के लिए ही हो रहा है.
कौन ते आप प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति. कृष्ण ऑलवेज प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटी. इट इज हिज प्रॉमिस.
कृष्ण का ये वचन है कि वो अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते हैं.
नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव विदाउट द सैंक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड. And for the welfare of society and for the betterment of his devotee, he will use his devotee as an instrument to give his mercy, not only to that devotee but to the world.
भगवान की इच्छा बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता. और समाज के कल्याण के लिए भगवान अपने भक्त को उपयोग करेंगे, न केवल भक्त पर कृपा करने के लिए बल्कि पूरी दुनिया पर कृपा वर्षा करने के लिए.
There is a saying in the English language that the darkest moment comes before the dawn.
Angrezi mein kahavat hai ki suryodaya hone se pehle sabse andhera wala samay hota hai.
That means when things get to their absolute worst and darkest state, that's the time when the supreme light of God's grace shines in our life.
Jab sthiti bilkul andhakarmay ho jata hai uske baad hi bhagwan ka prakash jo apne jeevan mein aata hai.
Therefore, knowing this with faith, a devotee welcomes God's mercy.
ये श्रद्धा से जानते हुए भक्त जो है भगवान की कृपा रूप में उसको स्वीकार करता है.
We may not analytically understand exactly what's happening, but we know why it's happening.
हमें शायद मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि क्यों हो रहा है.
We know in the end, it is all meant for our ultimate welfare.
हमें मालूम होना चाहिए कि जो अंत में सब हमारे कल्याण के लिए ही है.
So Maharaj Parikshit committed some small little mistake by Krishna's arrangement. And this Sringi, this little Brahmin boy, how is it that such a great, big, powerful king could be cursed to die by a child?
महाराज परीक्षित ने एक छोटी सी गलती की थी, तो फिर कैसे था कि इतने महान राजा एक छोटे से ब्राह्मण के शाप से जब मृत्यु होने वाली थी?
This child, because he was born in a Brahmin caste, was proud.
क्योंकि बालक का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था इसलिए वो अभिमानी थे.
And it was time for Kali Yuga to enter into this earth.
और कलयुग का धरती पर प्रवेश करने का समय हो चुका था.
And Parikshit Maharaj had to be removed before Kali could have any effect.
और कलयुग का प्रभाव होने से पहले यह परीक्षित महाराज को निकलना ही था.
How did Kali Yuga enter this world? Through the pride of a Brahman.
तो कलयुग का प्रवेश कैसा हुआ? ब्राह्मण के अभिमान से.
Proud that I am of a higher caste and others are lower than me.
ये उनका अभिमान था कि मैं उच्च वर्ण का हूँ और सब मेरे से नीचे हैं.
This ego was the beginning of the downfall of all humanity.
ये जो अभिमान है ये सारी मानवता के पतन का शुरुआत था.
When the priestly class, who are supposed to be qualitatively humble, forgiving, saintly and benevolent servants of all other societies, when they egoistically think, I am higher, I am better, and you are lower, that is the beginning of the degradation of all human race.
जब जो ब्राह्मण परिवार के लोग होते हैं, जो कि जिनको नम्र होना चाहिए, जिनको सहनशील होना चाहिए, जब वो सोचते हैं कि हम ज्यादा श्रेष्ठ या अभिमान हो जाते हैं, तो पूरी मानवता का पतन हो जाता है.
Kali Yuga was not ushered in this world through murderers or criminals or killers.
कलयुग का प्रवेश जो है कोई खून करने वाले या डाकुओं के द्वारा नहीं हुआ था.
It was ushered in this world by the so-called highest class of Brahmins who egoistically thought themselves better than others.
उनका प्रवेश जो है उस तथाकथित ब्राह्मण से हुआ जो कि अभिमानवश अपने को दूसरे से श्रेष्ठ मानते थे.
In fact, it is explained in the Bhagavad, and it's explained also in the Varaha Purana, that demons who hate God in Kali Yuga often take birth in Brahmin families.
ये भागवत में वराह पुराण में बताया गया है कि जो राक्षस जो भगवान से घृणा करते हैं वो कलयुग में जो है ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं.
Why? Because if they don't, if people don't lose their trust and faith in the priestly class, if people don't lose their trust and faith in the priestly class, then religion is strong and irreligion has no place.
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो धर्म जो है वो बहुत ही गंभीर रहेगा, वो बहुत मजबूत रहेगा और फिर अधर्म नहीं बढ़ सकेगा.
We must understand that Brahman is not by birth, it is by quality.
हमें जानना चाहिए कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता बल्कि गुण से होता है.
अहो बत स्वाप चौथो गरी यम यज जीव ग्रीवार्त थे नाम अथु व्याम. Kapiladev explains that even if one is born in what we call untouchable family, if he is chanting the name of God, that person is fully qualified and eligible to perform all the rituals, all the sacrifices, and all the activities of a Brahmin.
अगर कोई अशुद्ध परिवार में भी जन्म लिया है, अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वो ब्राह्मण के सारे रीति रिवाजों और कार्यों को करने के लिए काबिल है.
But a person who is born in a Brahmin family, even if he has all the 25 qualifications of a Brahmin, if he is not chanting God's name, if he is not a humble devotee, he cannot even deliver himself from suffering, what to speak of anyone else.
और दूसरी ओर कोई ब्राह्मण भी हो, सारे 25 गुणों से भरा हुआ हो, फिर भी अगर वो भगवान का नाम नहीं ले रहा, अगर वो नम्र नहीं है, तो वो अपने आप को भी मुक्त नहीं कर सकता, तो दूसरों को कैसे करेगा?
So we must judge a thing by its quality.
हमें गुण से जानना चाहिए.
कृष्ण says in Gita, चातुर्वर्णमयास्त्रिस्तम गुणकाम विभागशा, that one should engage in a particular type of work according to his qualities and his actions, nothing to do with birth.
भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि व्यक्ति को अपना कार्य गुण और कर्म से करना चाहिए, जन्म से नहीं.
This little Shringi, he did not have the qualities of a Brahmin. He was not forgiving. He was not humble, but because he was proud of his birth, he caused such chaos.
ये छोटा बालक था, ये सहनशील नहीं था, नम्र नहीं था, लेकिन इसीलिए उसने जो है समाज में ऐसा विडंबना पैदा कर दिया.
But at the same time, it was ultimately Krishna's arrangement that he cursed Maharaj Parikshit so that the Bhagavatam would be spoken.
लेकिन इसी समय ये अंततः ये भगवान का इंतजाम था जिससे कि राजा परीक्षित को शाप मिला और फिर भागवत कथा सुनाई गई.
And this is very interesting because if it was an adult that committed that sin, he would have never been forgiven.
और अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता तो इस तरह से कभी ऐसा नहीं होता.
But because it was a little child, when Sringi's father begged Krishna, please forgive him. He's just a child. He doesn't know better. He may be proud. He may be inexperienced. He may be disqualified. But still, he's a child. So he was forgiven.
तो Sringi Rishi कहने लगे कि ये जो है ये एक बालक है और इसका अभिमान अनुभव नहीं है इसलिए इसको क्षमा कर दो और इसलिए इसको क्षमा कर दिया गया.
But how Maharaj Parikshit, when he received the news, he considered it most auspicious.
जब राजा परीक्षित ने समाचार सुना तो उसने इसको बहुत ही मंगलकारी माना.
Ask seriously within your hearts tonight, what would your reaction be if you were told you would die in 7 days?
आप अपने हृदय से अपने आप से पूछिए कि आपके मन में क्या विचार आएगा अगर आपको बताया जाए कि 7 दिन में आपकी मृत्यु होने वाली है.
This is very relevant.
You know what?
Every day in the hospitals all over the world, even the healthiest people, they're diagnosed with some cancer or some disease, and the doctors say, you have 1 year or you have 6 months to live.
ये बहुत ही योग्य है क्योंकि जो स्वास्थ्य पुरुष होते हैं उनको भी अस्पतालों में देखते हैं कि डॉक्टर बताते हैं कि आपको कैंसर है आपको 1 साल है या 6 महीने ज्यादा से ज्यादा बचे हैं.
It can happen to any of us.
हम में से किसी को भी हो सकता है.
In fact, about 14 years ago, I became very sick and I went to 2 different doctors and each of them, big doctors, famous, both of them said, I would die within 6 months. There was nothing that could save me.
बल्कि ये 14 साल पहले महाराज के 2 डॉक्टर के पास गए थे जो कि बहुत ही योग्य थे और वो कहने लगे कि आप जो है मृत्यु होने वाली है 6 महीने में कोई बचा नहीं सकता.
And I remember, I was a brahmachari at the time. So I had no family, I was detached, I was thinking maybe I'm spiritually advanced.
बल्कि मैं उसमें ब्रह्मचारी था कोई परिवार नहीं था तो मैं सोच रहा था कि मैं आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा हुआ हूँ.
But when those words came into my ears and into my heart, I realized maybe I'm not so spiritually advanced.
जब वो शब्द मेरे कानों में पड़े तब मेरे को पता चला कि शायद मैं इतनी ज्यादा आगे नहीं बढ़ा हूँ भक्ति में.
I really don't want to die in 6 months.
मैं जो है 6 महीने में मरना नहीं चाहता.
It was a wonderful experience.
एक बहुत अद्भुत अनुभव था.
It may be very serious.
मेरे को बहुत गंभीर बना दिया.
It made me very serious, but it didn't make me die.
मेरे को बहुत गंभीर बना दिया लेकिन मृत्यु भी नहीं हुई.
But it's just delayed. Someday everyone has to die.
वैसे तो विलंब भी हुआ है लेकिन किसी ना किसी दिन तो मृत्यु होनी है.
So although it put me in tremendous distress that this is going to happen, I was praying to God, not that I live, that I can somehow or other just surrender to him during this next 6 months. That 6 months I was very serious.
मुझे दुख के कारण जो है ये 6 महीने में बहुत ही गंभीर हो गया था.
So Krishna puts his devotees through very suffering predicaments, but it's always for their welfare.
भगवान अपने भक्तों को बहुत दुख भेजते हैं लेकिन वो उनके कल्याण के लिए ही होता है.
There was a television show when I was a little child in America.
अमेरिका में जब महाराज बच्चे थे तब उस समय जो है एक टेलीविजन शो था.
It was the number one television show in the whole country.
वो पूरे देश में सबसे अव्वल दर्जे का टेलीविजन शो था.
It was about a man who was a very wealthy, famous lawyer who was told by the doctor that he would die in 1 year from cancer disease.
वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में था कि जिनको डॉक्टर ने बताया था कि आपको 1 साल में मृत्यु होने वाली है.
It was a once a week show. It was every Tuesday night at 8:30 p.m.
तो हर मंगलवार को रात को 8:30 बजे होता था.
And it just showed how he was spending his last year.
और बता रहे थे कि अपना अंतिम जीव अंतिम साल कैसे बिता रहे हैं.
He had so much money, he decided that I have to live and enjoy as much as I can this last year. I have to enjoy 50 years worth of pleasures in this year.
उन्होंने ऐसा सोचा कि अब मेरे को जो है एक साल में 50 साल का जो आनंद भोगना चाहिए.
And one year, one week, it showed him climbing the Swiss Alps with beautiful, beautiful Swiss lady.
और ऐसे बताया गया कि एक साल वो स्विस जो पर्वत पे चढ़ रहे हैं सुंदर स्विस स्त्रियों के साथ.
And another time, it showed him scuba diving underwater in the Caribbean with a beautiful Caribbean lady.
और इस तरह से कैरेबिया में जो है वहाँ पर अंदर पानी के अंदर जा रहे हैं उस प्रकार की स्त्रियों के साथ.
And another time, it showed him jumping from parachutes in Germany with a beautiful German lady.
और इस तरह से जर्मनी में वो पैराशूट से छलांग लगा रहे हैं जर्मन स्त्रियों के साथ.
In this way, every week he was just enjoying so much sense gratification with so many beautiful ladies.
इस तरह से बहुत स्त्रियों के साथ जो है वो इंद्र तृप्ति का भोग कर रहे थे.
And everyone would watch this TV show to see how he was going to enjoy the next week.
और सब लोग ये टेलीविजन शो देखते थे कि इस हफ्ते वो कैसे आनंद भोग कर रहे हैं.
Of course, most people were watching because they wanted to see which beautiful lady was with him this week.
अधिकांश लोग इसलिए देखना चाहते थे कि सुंदर स्त्री के कारण.
But anyways, the whole of America was thinking, this is a man who knows how to die.
पूरे अमेरिका में लोग सोच रहे थे कि यही व्यक्ति है जानता है कि कैसे मरना चाहिए.
I just hope that when it comes my time, I can die in such a spirit of living my life to its fullness.
और वो सोच रहे थे कि ना जब मेरा भी मृत्यु का समय हो मैं आशा करता हूँ कि मैं भी इस तरह से पूर्ण रूप से आनंद भोग कर सकूं.
In fact, this show became so popular.
और उनका जो शो है बहुत ज्यादा मशहूर हो गया.
That after a year, the show was making so much money that they extended his life another year.
और वो शो इतना मशहूर हो गया कि इसके बाद में एक साल और उनका जीवन अवधि बढ़ा दी गई.
At the end of that year, he went for a checkup, and the doctor said, "You have one more year."
वो साल के अंत में जब डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने कहा कि एक साल और आपको दिए.
And then at the end of that year, he went for another checkup. The doctor said, "One more year."
और दूसरी बार गए, तो फिर बताया कि एक और साल.
Because it became so popular, it was making so much money, and everyone was thinking like this: such a great person, this is how he's dying.
सब वो इतने मशहूर हो गए और सब लोग सोच रहे थे इतना महान व्यक्ति है इस तरह से हमारी मृत्यु होनी चाहिए.
कृष्ण says in Gita, यानि सर्वभूतानां तस्यं जगृति संयमे यस्यं जगारति भूतानि सानि पश्यतो मुने. That a materialistic person, his way of thinking is completely opposite than a spiritually oriented man.
भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति का सोचने का ढंग होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है भौतिकवादी व्यक्ति के प्रति.
What is night for a materialist is day for a devotee, and what is night for a devotee is day for a materialist.
जो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए रात्रि है वो भक्त के लिए दिन है, और जो भक्त के लिए रात्रि है वो भौतिकवादी व्यक्ति के लिए दिन है.
A worldly person is always wide awake to accumulate more and more and more and enjoy more and more and more through his mind and senses.
एक भौतिक व्यक्ति होता है वो हमेशा जागृत रहता है कि ज्यादा से ज्यादा इंद्र तृप्ति करे और धन एकत्र करे.
And when it comes to self-realization, he doesn't have time.
और आत्म साक्षात्कार के लिए उसके पास कोई समय नहीं होता.
To those things he sound asleep.
उसके लिए वो बिल्कुल सोए रहते हैं.
But a devotee, he's wide awake to engage in the loving service of the Lord and purify his life through japa, kirtan, meditation and devotional activities.
और एक भक्त जो है जप कीर्तन और भक्ति के कार्यों में पूर्ण रूप से जागृत रहता है.
And he sound asleep to these selfish materialistic pursuits.
और ये जो भौतिक जो कार्य हैं उसमें वो बिल्कुल सोया रहता है.
So here we find the name of this television show was Run for Your Life.
ये टेलीविजन शो का नाम था कि अपने जीवन के लिए दौड़ो.
You used to watch that? This is Rohini Nandan Swami Maharaj. He's from Kerala, but he obtained a PhD in science in Indiana University in America. Huh? So he was around in those days. So he used to watch that television show also. Shrigali, you remember? Run for your life. See, he also, it was very famous. But here is Maharaj Parikshit. Can you imagine if he wanted to run for his life? He was the king. Those last 7 days, he could have had just the most incredible party that's ever been seen in the history of mankind.
राजा परीक्षित इतने बड़े राजा थे, अगर वो इस तरह का जीवन बिताना चाहते थे तो वो सबसे ज्यादा इंद्र तृप्ति कर सकते थे आखिरी दिनों में.
He could have been just having incredible feasts and enjoying just unbelievable sense gratification those 7 days.
वो तो बिल्कुल अमाननीय इंद्र तृप्ति कर सकते थे, अनेक प्रकार के भोजन व्यंजन ले सकते थे.
But he left his palace.
लेकिन उन्होंने अपना महल त्याग दिया.
He took off all his royal clothes and put on one kopan.
और उन्होंने सब वस्त्रों को त्याग करके बस एक कॉफिन ग्रहण किया.
He left his family, he left his friends, he left everything to sit on the hard bank of the river Ganges.
और उन्होंने अपने परिवार मित्रों सबको त्याग कर गंगा जी के तट पर आकर बैठ गए.
And he vowed not to eat and not to sleep until he died.
और उन्होंने निश्चय कर लिया कि जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक मैं सोऊंगा भी नहीं और खाऊंगा भी नहीं.
And he was jubilant.
और वो बहुत आनंददायक स्थिति में थे.
The man from Run for Your Life, he was trying to put fuel on a fire.
जो जीवन के दौड़ो विषयों का व्यक्ति था वो तो है जो अग्नि में और ज्यादा ईंधन डाल रहा था.
No matter how much gratification, he was always frustrated in anxiety and suffering for more.
चाहे वो कितने भी इंद्र तृप्ति हो वो हमेशा दुखी रहते थे और ज्यादा अभिलाषा करते रहते थे.
But Maharaj Parikshit, no food, no drink, no sleep. Sitting on the hard ground, but he was in complete bliss because he was in the association of devotees, hearing and chanting the glories of the Lord.
लेकिन महाराज परीक्षित न खा रहे थे न सो रहे थे लेकिन वो पूर्ण आनंद में थे क्योंकि वो भक्तों के संग में भगवान का श्रवण और कीर्तन कर रहे थे.
And this is what he is praying.
और यही वो प्रार्थना कर रहे हैं.
O Brahmins, the Supreme Personality of Godhead, the controller of both spiritual and material worlds, has graciously overtaken me in the form of a Brahmin's curse.
वो बोलने लगे कि भगवान ने जो है बहुत कृपापूर्वक एक शाप के रूप में मुझे ले लिया है.
Due to my being too attached to my family life and material possessions, the Lord, in order to save me, has appeared before me in such a way that only out of fear I will detach myself from the world.
क्योंकि मेरे को परिवार के प्रति इतनी आसक्ति थी तो भगवान ने मुझे ऐसी स्थिति में डाला है कि डर के मारे मैं ये सब त्याग दूंगा.
Just accept me as a completely surrendered soul.
मेरे को एक पूर्ण समर्पित जीव के रूप में स्वीकार करिए.
And let Mother Ganges, the representative of the Lord, also accept me in that way.
और भगवान के प्रतिनिधि गंगा मैया भी मेरे को उसी स्थिति में स्वीकार करें.
For I have already taken the lotus feet of the Lord into my heart.
क्योंकि मैंने भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में ले लिया है.
Let the snake bird or whatever magical thing the Brahmin created bite me at once.
तो ये जो सांप है या जो कोई जादू का प्राणी है वो मुझे अभी काट लेवे.
I only desire that you all continue singing the deeds of Lord Vishnu.
और मैं यही अभिलाषा करता हूँ कि आप जो है भगवान विष्णु के कार्यों का गुणगान करते रहें.
Again, offering obeisances to all you Brahmins.
मैं सब ब्राह्मणों को फिर से दंडवत करता हूँ.
I pray that if I should again take my birth in the material world.
अगर मैं फिर इस भौतिक संसार में जन्म लूँ भी.
I will have complete attachment to the unlimited Sri Krishna.
मेरे को अनंत भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रहे.
Association with his devotees.
उनके भक्तों का संग रहे.
And friendly relations with all living beings.
और सब प्राणियों के प्रति मित्र भावना रहे.
This is the perfection of life.
यही जीवन की सिद्धि है.
Whatever our situation may be, हम whether we be children, students, whether we be sannyasis or brahmacharis, whether we be mothers or fathers, or whether we be working for the Indian railways, or whether we be doctors or farmers or lawyers or businessmen, The perfection of our life is to perform our duties in consciousness that the goal of life is to always remember Krishna.
तो हम चाहे विद्यार्थी हों, चाहे हम ब्रह्मचारी सन्यासी हों, या माता पिता हों, या डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, या रेलवे में हों, हमारा जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम हमेशा जो है श्री कृष्ण भावना में रहें.
Death can come at any moment. We have to prepare ourselves now.
मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, इसलिए इसी क्षण हमें तैयारी करनी चाहिए.
The greatest disgrace in human society is if someone thinks that their spirituality should wait till another day.
सबसे बुरी बात यह है कि अगर कोई सोचे कि आध्यात्मिक जीवन किसी दूसरे दिन किया जा सकता है.
It is the urgent need to take our spiritual life serious today.
ये बहुत अत्यंत आवश्यक है कि हम आध्यात्मिक जीवन को आज ही ग्रहण करें.
We do not have to neglect our worldly responsibilities, but we should never neglect our spiritual duties to God.
हमें अपनी भौतिक जिम्मेदारी को ठुकराना नहीं है, लेकिन भगवान के प्रति अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को भी कभी नहीं भूलना है.
And what is the supreme most gift of God in this world? It is so easily and readily available to every one of us.
और भगवान का ये सुंदर भेंट क्या है, सबसे उदार, जो कि हम सबको बड़ी आसानी से मिल सकता है.
कलेर दो समिदे राजन अस्ति एक महान गुणा कीर्तनारेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे. That in this age of Kali Yuga, which is an ocean of faults,
ये कलयुग जो है दोषों की निधि है.
In this age of Kali Yuga, there's terrorism, there's bomb blasts, there's prostitution, there's drug addiction, there's crazy television, crazy cinemas, everything trying to drag your mind away from God.
आजकल ये सब चीजें जो है, टेलीविजन हो या कोई नशीली चीजें हो या जो वेश्यावृत्ति हो, ये सब चीजें हमें भगवान से दूर ले जाती हैं.
But there's one benediction. That anyone and everyone, if they simply learn how to come in the association of sincere devotees to hear the glories of the Lord and chant His names, they will attain the perfection of liberation.
और यह आशीर्वाद है कि जो सबके लिए है कि जब हम एकत्र होकर जो है भगवान का नाम संकीर्तन कर सकते हैं.
What we have here tonight is the most important and most beneficial gift in all of creation, the opportunity to hear the glories of the Lord in the company of sincere devotees.
आज जो हमें एक चीज जो यहाँ उपलब्ध है वो ये है, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है पूरी सृष्टि में, कि भगवान के भक्तों के संग में जो है श्रवण कीर्तन के.
To chant Krishna's names,
भगवान का नाम कीर्तन करने,
is the fulfillment of all of our desires.
हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है.
But when we must chant in the association of sincere devotees.
हमें जो है सच्चे भक्तों के संग में नाम कीर्तन करना चाहिए.
And we must chant with great attention.
हमें बड़े ध्यान पूर्वक कीर्तन करना चाहिए.
Very seriously.
बहुत गंभीर भावना से.
In a sense of emergency, urgency.
जैसे कि बहुत ही कोई जल्दी हो, उस भावना से.
In the mood of Maharaj Parikshit, we should be calling out the name of God.
महाराज परीक्षित की भावना के अनुसार जो है हमें भगवान के नाम को पुकारना चाहिए.
We should know that this is the prime duty of life and the ultimate service of a man about to die.
ये हमें समझना चाहिए कि यही जीवन का जो है मुख्य कर्तव्य है, और विशेषतः जिसकी मृत्यु होने वाली है.
But if you do not start chanting now, it will be impossible to chant at the time of death.
अगर हम अभी नाम कीर्तन नहीं करेंगे तो मृत्यु के समय कीर्तन करना संभव नहीं होगा.
Death is the final exam.
मृत्यु जो है वो अंतिम परीक्षा है.
If you do not practice during your life, you will fail the exam.
अगर आप जीवन में अभ्यास नहीं करेंगे तो एग्जाम में आप फेल हो जाएंगे.
You both stand up. No, just the two of you. I have a question. This one. Very nice. You put it between an answer together. Do you go to school?
Yes.
Do you have tests?
Yes.
Do you like tests?
No.
If you know you're having a test at the end of the school year, do you play all year and just think, I will pass the test when the time comes?
Yes.
Or do you study to prepare yourself for the test?
No, I just go on playing, I just postpone. I will do it. I'll pass.
You never study.
I study, but just one day before the exam.
Does your parents know this?
Yes.
You study?
Yes.
Study. But do you go to school every day?
Yes.
What about you?
Yes.
But going to school is preparing for the test, is it not? Do you just show up the last day to take the test?
Yes.
Maharaj is asking whether you go only on the last day for the exam, you don't go on other days.
Do you miss all your classes and just come last day, or do you go to all classes?
I go to all classes.
Going to all classes means preparing? Huh? In the same way, the time of death is the last test. It's the final exam of life, and everything's based on that final exam. If you do not come to classes like tonight, and you do not practice at home, chanting the name of God and remembering God, you are 100% guaranteed to fail the test. Unless we prepare ourselves during our life, we cannot pass this test. The time of death, it is a hard test. The most difficult test in all of creation is death. If you are not completely trained to take shelter of God in His name, you cannot chant at the name of time of death. So we must understand that now is the time to take to spiritual life, to be Krishna conscious, and to chant Hare Krishna,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare.
You are very honest. But will you study for this test of being Krishna conscious?
Surely.
You will start chanting now?
Yes.
So we should be chanting in this spirit. We should have meetings like this as often as possible and come together to hear and chant the glories of the Lord. So everyone please stand up.